ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन 6190। मुरली का टाइटल है होली हंस की परिभाषा। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज ज्ञान सागर बाप होली हंसों का संगठन देख रहे हैं। होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाली आत्माएं। स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध सर्व में पवित्रता की निशानी सदा ही सफेद रंग के दिखाते हैं। आप होली हंस भी सफेद वस्त्रधारी साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। अगर कोई तन से अर्थात बाहर से कितना भी स्वच्छ हो साफ हो लेकिन मन से साफ ना हो स्वच्छ ना हो तो कहते हैं कि पहले मन को साफ रखो। साफ मन व साफ दिल पर साहिब राजी होता है। साथ साथ साफ दिल वाले की सर्व मुराद अर्थात कामनाएं पूरी होती है। हंस की विशेषता स्वच्छता अर्थात साफ है, इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। चेक करो कि मुझे होली हंस आत्मा की चारों ही बातों में अर्थात तन मन दिल और संबंध में स्वच्छता है। संपूर्ण स्वच्छता व पवित्रता यही हंस यही इस संगम युग में सबका लक्ष्य है। इसलिए ही आप ब्राह्मण सो देवताओं को संपूर्ण पवित्र गाया जाता है। सिर्फ निर्विकारी नहीं कहते लेकिन संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। 16 कला संपन्न कहा जाता है। सिर्फ 16 कला नहीं कहते लेकिन उसमें संपन्न गायन आपके ही देवता रूप का है। लेकिन बने कब? ब्राह्मण जीवन में व देवता जीवन में बनने का समय आप संगम युग है। इसलिए चेक करो कि कहां तक अर्थात कितने परसेंट में स्वच्छता अर्थात धारण की है। तन की स्वच्छता अर्थात सदा इस तन को आत्मा का मंदिर समझ इस स्मृति से स्वच्छ रखना। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो आप श्रेष्ठ मूर्तियां हो या साधारण हो, ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर वन श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ब्राह्मणों के आगे देवताएं भी सोने तुल्य है और ब्राह्मण हीरे तुल्य है। तो आप सभी हीरे की मूर्तियां हो। कितनी ऊंची हो गई, इतना अपना स्वामान जान इस शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखो। सदा हो लेकिन स्वच्छ हो। इस विधि से तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराएगी। ऐसी स्वच्छता पवित्रता कहाँ तक धारण हुई? देहवान में स्वच्छता नहीं होती लेकिन आत्मा का मंदिर समझने से स्वच्छ रखते हो। और यह मंदिर भी बाप ने आपको संभालने और चलाने के लिए दिए हैं। इस मंदिर का ट्रस्टी बनाया है आपने, तो तन मन धन सब दे दिया ना। अभी आपका तो नहीं है, मेरा कहेंगे या तेरा कहेंगे? तो ट्रस्टीपन स्वतः ही नष्ट मोहा अर्थात स्वच्छता और पवित्रता को अपने में लाता है। मोह से स्वच्छता नहीं लेकिन बाप ने सेवा दी है ऐसे समझ तन को स्वच्छ पवित्र रखते हो ना, वह जैसे आता है वैसे चलाते रहते हो। स्वच्छता भी रूहानियत की निशानी है। ऐसे ही मन की स्वच्छता या पवित्रता इसकी भी परसेंटेज देखो। सारे दिन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प मन में चला तो इसको संपूर्ण स्वच्छता नहीं कहेंगे। मन के प्रति बाप दादा का डायरेक्शन है, मन को मेरे में लगाओ व विश्व सेवा में लगाओ। मन मना भव इस मंत्र की सदा स्मृति रहे। इसको कहते हैं मन की स्वच्छता व पवित्रता। और किसी तरफ भी मन भटकता है तो भटकना अर्थात अस्वच्छता। इस विधि से चेक करो कि कितने परसेंट में स्वच्छता धारण हुई, विस्तार तो जानते हो ना। तीसरी बात, दिल की स्वच्छता, इसको भी जानते हो कि सच्चाई ही सफाई है। अपने स्व उन्नति अर्थ जो भी पुरुषार्थ है, जैसा भी पुरुषार्थ है, वह सच्चाई से बाप के आगे रखना। तो एक स्वयं की पुरुषार्थ की स्वच्छता, दूसरा सेवा करते सच्ची दिल से कहां तक सेवा कर रहे हैं इसकी स्वच्छता। अगर कोई भी स्वार्थ से सेवा करते हो तो उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। तो सेवा में भी सच्चाई सफाई कितनी है। कोई कोई सोचते कि सेवा तो करनी ही पड़ेगी, जैसे लौकिक गवर्नमेंट की ड्यूटी है, चाहे सच्ची दिल से करो, चाहे मजबूरी से करो, चाहे अलबेले बन के करो, करनी ही पड़ती है ना। कैसे भी 8 घंटे पास करने ही हैं। ऐसे इस ऑलमाइटी गवर्नमेंट द्वारा ड्यूटी मिली हुई है, ऐसे समझ के सेवा करना, इसको सच्ची सेवा नहीं कहा जाता। ड्यूटी सिर्फ नहीं है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का निजी संस्कार ही सेवा है। तो संस्कार स्वतः ही सच्ची सेवा के बिना रहने नहीं देते। तो ऐसे चेक करो कि सच्ची दिल से अर्थात ब्राह्मण जीवन के स्वतः संस्कार से कितने परसेंट की सेवा की, इतने मेले कर लिए, इतने कोर्स करा लिए, लेकिन स्वच्छता और पवित्रता की परसेंटेज कितनी रही। ड्यूटी नहीं है, लेकिन निजी संस्कार है, स्वधर्म है, स्वकर्म है। चौथी बात, संबंध में स्वच्छता। इसका सार रूप में विशेष यह चेक करो कि संतुष्टता रूपी स्वच्छता कितने परसेंट में है। सारे दिन में भिन्न भिन्न वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है। 3 प्रकार के संबंध में आते हो, एक ब्राह्मण परिवार के, दूसरा आए हुए जिज्ञासु आत्माओं के, तीसरा लौकिक परिवार के। तीनों ही संबंध में सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं की संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही। संतुष्टता की निशानी, स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश होंगे। असंतुष्टता की निशानी, स्वयं भी मन से भारी होंगे। अगर सच्चे पुरुषार्थी है तो बार बार ना चाहते भी वे संकल्प आता रहेगा कि ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं करते तो अच्छा, यह बोलते थे, यह करते थे, यह आता रहेगा। अलबेले पुरुषार्थी को यह भी नहीं आएगा, तो यह बोझ खुश रहने नहीं देगा, हल्का रहने नहीं देगा। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसलिए आप कहते हो सच तो बिठो नाच, अर्थात सच्चा सदा खुशी में नाचता रहेगा। तो सुना होली हंस की परिभाषा। अगर सत्यता की स्वच्छता नहीं है तो हंस हो लेकिन होली हंस नहीं हो। तो चेक करो संपन्न और संपूर्ण का जो गायन है वह कहां तक बने हैं। अगर ड्रामा अनुसार आज भी इस शरीर का हिसाब समाप्त हो जाए तो कितने परसेंटेज में पास होंगे। बा ड्रामा को कहो थोड़ा समय ठहरो, यह तो सोचकर नहीं बैठे हो कि छोटे छोटे तो जाने वाले हैं नहीं अभी। एवर रेडी का अर्थ क्या है, समय का इंतजार तो नहीं करते कि अभी 20-22 वर्ष तो है, बहुत करके 1000 का हिसाब सोचते हैं। लेकिन सृष्टि के विनाश की बात अलग है, अपने को एवर रेडी रखना अलग बात है। इसलिए यह उससे नहीं मिलाना, भिन्न भिन्न आत्माओं का भिन्न भिन्न पार्ट है। इसलिए यह नहीं सोचो कि मेरा एडवांस पार्टी में तो नहीं है या मेरा तो विनाश के बाद भी पार्ट है। कोई आत्माओं का है लेकिन मैं एवर रेडी हूँ, नहीं तो अलबेलेपन का अंश प्रकट हो जाएगा। एवर रेडी रहो, फिर चाहे 20 वर्ष जिंदा रहो, कोई हर्जा नहीं, लेकिन ऐसे आधार पर नहीं रहना। इसको कहते हैं होली हंस। ज्ञान सागर के कंठे आए हो ना, तो आज होली हंस की स्वच्छता सुनाई, फिर विशेषता सुनाएंगे। टीचर्स को चेक करना आता है ना, टीचर्स को विशेष समर्पित होने का भाग्य मिला हुआ है। चाहे प्रवृत्ति वाले भी मन से समर्पित है, फिर भी टीचर्स का विशेष भाग्य है। काम ही याद और सेवा का है। चाहे खाना बनाती या कपड़े धुलाई करती, वह भी यह सेवा है। वह भी अलौकिक जीवन प्रति सेवा करती हो। प्रवृत्ति वालों को दोनों तरफ निभाना पड़ता है। आपको तो एक ही काम है ना, डबल तो नहीं है, जो सच्चाई और सफाई से बाप और सेवा में सदा लगे रहते हैं, उन्हें कोई और मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सुनाया था कि योग्य टीचर का भंडारा और भंडारी सदा भरपूर होगा। फिक्र नहीं करना पड़ेगा अगला मास कैसे चलेगा, मेला कैसा होगा। सेवा के साथ साथ साधन स्वतः प्राप्त होंगे। रूहानी आकर्षण सेवा और सेवा केंद्र स्वतः ही बढ़ाती रहती है। जब ज्यादा सोचते हो कि जिज्ञासु क्यों नहीं बढ़ते, ठहरते क्यों नहीं, चले क्यों जाते, तो जिज्ञासु नहीं ठहरते। योग युक्त होकर रूहानियत से आह्वान करते हो तो जिज्ञासु स्वतः ही बढ़ते हैं। ऐसे होता है ना, तो मन सदा हल्का रखो, किसी प्रकार का बोझ नहीं रहे। किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे अपना, चाहे सेवा का, चाहे सेवा साथियों का, तो उड़ने नहीं देगा। सेवा भी ऊंची नहीं उठेगी। इसलिए सदा दिल साफ और मुराद हासिल करते रहो। प्राप्तियां आपके सामने स्वतः ही आएगी। क्या सुना, सर्व रूहानी प्राप्तियां है ही ब्राह्मणों के लिए, तो कहां जाएगी। अधिकार ही आप लोगों का है, अधिकार कोई छीन नहीं सकता। अच्छा, सर्व होली हंसों को, चारों ओर के सच्चे साहिब को राजी करने वाली सच्चे दिल वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वयं को एवर रेडी रखने वाले नंबर वन बच्चों को, सदा अपने को गायन योग्य संपूर्ण और संपन्न बनाने वाले बाप के समीप बच्चों को, सदा अपने को अमूल हीरे तुल्य अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। महाराष्ट्र गुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा खुशहाल रहते हो, खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न। खुशहाली स्वयं को भी प्रिय, औरों को भी प्रिय लगती है। जहाँ खुशहाली नहीं होती, उसे कांटों का जंगल कहते हैं। तो आप सबकी जीवन खुशहाल बन गई है, और चाल कौन सी हो गई, उड़ती कल्प वाली फरिश्ता की चाल हो गई। तो हाल भी अच्छा और चाल भी अच्छी। दुनिया वाले मिलते हैं तो हाल चाल पूछते हैं ना, तो आपका क्या हाल चाल है। हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों का चाल, दोनों की अच्छे है ना। खुशहाली में कोई कांटे नहीं आएंगे। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी बदल गई, अभी फूलों की खुशहाली में आ गए। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवारी लगी हुई है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते का चित्र बनाते हैं ना, वह दिव्य गुणों का गुलदस्ता कौन सा है, आप हो ना, ये दूसरा कोई है। कांटों का कभी गुलदस्ता नहीं बनता, फूलों का गुलदस्ता बनता है। सिर्फ पत्ते ही होंगे तो भी कहेंगे गुलदस्ता ठीक नहीं है। तो आप स्वयं दिव्य गुणों का गुलदस्ता अर्थात खुशहाल हो गए। जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देख करके खुश होंगे, शक्ति का भी अनुभव करेंगे। इसलिए आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं बगीचे में जाकर पैदल करो तो खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती है और खुशी में भी लाती है। इसलिए आप लोग कहते हो कि हम एवर हैप्पी है, चैलेंज भी करते हो कि अगर किसी को एवर रेडी बनाना हो तो हमारे पास आए। आप सभी को बाप की स्मृति दिलाएंगे तो एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी, यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। यह अधिकार आपको तो मिल गया ना। सभी को कहते हो कि जन्म सिद्ध अधिकार है, चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन तंदुरुस्त है ना। मन खुश तो जहान खुश, और मन बीमार तो शरीर पीला हो जाता है। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा, ऐसे होता है ना? क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। दवाई अच्छी होती है तो बीमारी भाग जाती है। आपके पास जो खुशी की खुराक है वह बीमारी को भगा देती है, भुला देती है। तो मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश, इसलिए एवर हेल्दी भी हो, वेल्दी भी हो और हैप्पी भी हो। जब स्वयं हो तब दूसरे को चैलेंज कर सकते हो, नहीं तो चैलेंज नहीं कर सकते। अपने को देखकर औरों के ऊपर रहम आता है, क्योंकि अपना परिवार है ना। चाहे कैसी भी आत्माएं हैं लेकिन है तो एक ही परिवार की। जिसको भी देखेंगे तो महसूस करेंगे कि यह हमारा ही भाई है, हमारे ही परिवार का है। परिवार में भी कोई नजदीक के होते हैं, कोई दूर के होते हैं, लेकिन कहेंगे तो परिवार के ना। जैसे बाप रहम दिल है, बाप से यही मांगते हैं कि कृपा करो, रहम करो, तो आप भी कृपा करेंगे, रहम करेंगे ना, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो। ब्राह्मण आत्मा को कभी भी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती। रहम आएगा, घृणा नहीं आ सकती, क्योंकि जानते हैं कि चाहे कंस हो, चाहे जरासंध हो, चाहे रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहम दिल बाप के बच्चे कभी घृणा नहीं करेंगे। परिवर्तन की भावना रखेंगे, कल्याण की भावना रखेंगे। फिर भी अपना परिवार है, परवश है, परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं आती। सभी माया के वश है तो परवश के ऊपर दया आती है, रहम आता है। जहां घृणा नहीं आएगी वहां क्रोध भी नहीं आएगा। जब घृणा आती है तो जोश आता है, क्रोध आता है। जहां रहम होता है वही शांति का दान देंगे। दाता के बच्चे हो ना तो शांति देंगे ना। अच्छा, सभी खुशहाल रहने वाले हो या कभी कभी खुशी गायब हो जाती है? अगर क्रोध आया तो क्रोध अग्नि है, वह खुशी को खत्म कर देती है। कभी गुस्सा नहीं करना, रहम दिल के कभी क्रोध नहीं आ सकता। पांडवों में विशेष क्रोध और माताओं में मोह होता है। पैसे भी छिपा कर रखेगी, पुराने पुराने नोट भी छिपा कर रखेंगे। अभी तो नष्ट मोहा होना, पुराने कपड़े की गठरी बांध कर तो नहीं रख दी है। कितनी भी तिजोरी हो, पेटी हो, लेकिन माताओं में गठरी बांध कर रखने की आदत होती है। और कुछ नहीं तो साड़ी बांध कर रखेंगे, तो अभी कुछ बांध कर तो नहीं रखा है। पांडवों ने थोड़ा थोड़ा क्रोध, अभिमान छिपा कर रखा है। मन की जेब में आई बेल के लिए छिपा कर तो नहीं रखा है। अंश मात्र भी ना रहे, अंश वंश को पैदा कर देगा, इसलिए फूल खाली करो। अच्छा, जोन वाइज ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाप की स्नेह ने सब कुछ भुलाकर उड़ाते हुए अपने स्वीट होम मधुबन में पहुंचा दिया। क्या समझते हो, ट्रेन में आए हो या उड़ते हुए आए हो? शरीर चाहे ट्रेन या बस में आया, लेकिन मन स्नेह में उड़ते हुए यहाँ पहुंच गया। मधुबन और मधुबन का बाबा याद आ गया तो सब भूल गया। भुलाने की मेहनत करनी नहीं पड़ती, बस बाप और पढ़ाई, यही याद है ना? पढ़ाई भी देखा, राजकुमार और राजकुमारियां की भी ऐसी पढ़ाई नहीं होती। कितनी रॉयल और ऊंच पढ़ाई है, सारे कल्प में राजा बनने की पढ़ाई कोई नहीं पढ़ाता, क्योंकि पढ़ाई से राजा कोई बनता ही नहीं। इस समय आप ही इस पढ़ाई से राजा बनते हो, राजा भी नहीं, राजाओं का राजा। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई कोई नहीं पढ़ता। राजकुमार बनकर राजकुमार कॉलेज में जाते हैं, राजा बनने की पढ़ाई नहीं पढ़ते। वह तो जानते हैं कि धन दान से राजा बनते हैं, पढ़ाई से राजा नहीं बनते। आपकी पढ़ाई राजा ही प्राप्त करने की है। अभी स्वराज मिला, फिर विश्व का राज्य मिलेगा। अभी राजा हो ना या प्रजा का राज है। प्रजा यानी कर्मेंद्रिया, यह कर्मचारी है तो कोई कर्मेंद्रिय अर्थात प्रजा का राज तो नहीं है ना? कभी कभी प्रजा तेज तो नहीं हो जाती, राजा को ढीला कर देती है। सतयुग में प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं होगा, राजा का राज्य होगा। यह तो चक्र के लास्ट में प्रजा का प्रजा पर राज्य है, लेकिन आपके पास तो प्रजा का राज्य नहीं है ना? अच्छी तरह से चेक करना, कभी प्रजा राजा तो नहीं बन जाती? अधिकार लेना माना राजा बनना, जैसे आजकल करते हैं। एक सेकंड में राजा को उतार कर कि दूसरा राजा बैठ जाता है, या उसको खत्म कर देते हैं या राज्य से उतार देते। तो आपकी प्रजा ऐसे तो नहीं करती, राजा को गुलाम बना दे और खुद राजा बन जाए। शक्तिशाली राजा हो, कमजोर राजा नहीं। जिस राजा से प्रजा सदा खुश है, ठीक राज्य चलता है, तो उसको उतारेगी कैसे? आप भी स्वराज ठीक रीति से चला रहे हो तो कोई कर्मेंद्रिय धोखा नहीं देगी, क्योंकि वह संतुष्ट है। जहां असंतुष्टता होती है वहां धोखा देती है। तो आपका राज्य कैसे चल रहा है? सर्व कर्मेंद्रियां संतुष्ट है, प्रजा खुश है, कर्मेंद्रिय शीतल शांत हो गई है, धोखा देने की चंचलता समाप्त हो गई है। अभी क्या बन गए हो? शीतला देवी। जो स्वयं शीतला होगी तो यथा राजा तथा प्रजा होगी, वह सब कर्मेंद्रियां भी शीतल हो जाएगी। शीतला देवी में कभी क्रोध नहीं आता है। कोई कहते हैं क्रोध नहीं है, थोड़ा रोग तो रखना पड़ता है। रोग भी क्रोध का अंश है, तो जहां अंश होता है वही वंश पैदा हो जाता है। तो शीतला देवी और शीतला देव होना, संगम पर बाप माताओं को आगे रखते हैं। अच्छा, ओम शांति।